ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ शुद्धात्मने सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म किफाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास जासते जाने निज गुण धार लब्धि सार को पाय के करि के क्षपणासार हो है प्रवचन सार सो समय सार विकार।
आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धि सार आदि ग्रंथ लिखे हैं। लब्धिसार ग्रंथ के आधार से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होने के पूर्व जो पांच लब्धि होती है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा है इन पांच लब्धियों के नाम हमने देखे क्षोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। उसके पश्चात प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। क्षोपशम लब्धि में हमने देखा था कि जिस काल में ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ यानी अनंतवा भाग होकर उदय में आने लगता है उस काल में उसको क्षोपशम लब्धि कहलाती है। और उसी के फलस्वरूप क्योंकि जैसे ज्ञानावरण का अनुभाग घटता है वैसे मिथ्यात्व और चारित्र मोह का भी अनुभाग घटकर उदय में आता है तो नेचुरली उसके फलस्वरूप वहां मंद राग होते हैं, मंद कषाय हो जाता है, शुभ राग रूप प्रवृत्ति होती है। वो शुभ राग रूप प्रवृत्ति के कारण उस समय होने वाला बंद उस समय हो क्योंकि अंतर्मुहूर्त की बात चल रही है तो उतने काल में उसको पुण्य प्रकृति बनती है उसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि। दोनों एक ही साथ है क्षोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। फिर भी कारण जानकर क्षोपशम लब्धि को पहले कहा और विशुद्ध लब्धि को पश्चात कहा वो कार्य रूप है। अब देशना लब्धि का प्रकरण हमें हमारा चल रहा है। देशना लब्धि के प्रकरण में हमने देखा था देशना का अर्थ होता है उपदेश। तो उपदेश किस विषय के संबंध में चाहिए, उपदेश दाता कौन चाहिए और वो सुनने वाला क्या करता है वो भी, ये तीन बातें हमने देखी थी। जरा निकालना हम उसकी डेफिनेशन देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ पृष्ठ संख्या हम देखते हैं 72 होनी चाहिए गुजराती में। हाँ बहत्तर है ना
77 होगी।
नहीं डेफिनेशन जहाँ
72
जहाँ 75 पृष्ठ पर है अपने में। देशना लब्धि का प्रकरण बहुत बड़ा है इसमें क्योंकि उसी के बारे में बहुत हमारे कंफ्यूजन चलते हैं। देशना लब्धि के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे प्रश्न है, इसलिए ये प्रकरण भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ हम डेफिनेशन देख के फिर आगे बढ़ेंगे जहाँ हम आए हैं। उपदेश किस संबंधी चाहिए उसकी यहाँ कुछ थोड़ी बातें बताइए। तो कहते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व अर्थात 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग कहाँ से कहाँ तक होता है? हाँ यानी सम्यक तो प्राप्ति से लेकर मोक्ष के पहले तक मार्ग तब तक फिर हम मोक्ष कहेंगे। तो मोक्ष मार्ग कहाँ तक है? सम्यक दर्शन यानी चौथे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक का स्वरूप, उसको कहेंगे हम मोक्ष मार्ग। सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्यों? क्योंकि उपदेश तो हमें उन्हीं से प्राप्त होना है, इसलिए जो उपदेश दाता है उसका भी सच्चा स्वरूप पता हो, नहीं तो हम चाहे जिसे उपदेश सुनेंगे और फिर हमें सही मार्ग नहीं मिलेगा तो हम भटक जाएंगे, इसलिए उनका भी स्वरूप जानना योग्य है। स्व और पर का ज्ञान, हेय गेय उपादेय भाव, हेय यानी छोड़ने योग्य, आज उस पर चर्चा हुई थी ना, हेय में कौन कौन से भाव देखे भाई आपने? हाँ, आश्रय और बंध। और भावों में बताना है तो शुभ भाव लेना है कि शुद्ध भाव लेना है कि अशुभ भाव लेना है? छोड़ने योग्य कौन कौन से भाव? प्रकट क्या करना है? प्रकट कौन सा भाव करना है? शुद्ध भाव। तो शुद्ध भाव प्रकटने से कौन से भाव हेय हो जाएंगे? शुभ और अशुभ दोनों। तो पहले श्रद्धा में लेना है, कल बात हुई थी ना इसके बारे में, श्रद्धा में पहले लिया जाता है और जब शुद्ध भाव प्रकट होता है तो ये हेय हो जाते हैं। तो ये हेय गेय यानी जानने योग्य, सारा विश्व ही जानने योग्य में है, परंतु कैसा जानना है? जो मैं हूं तो मैं हूं, परंतु मेरे अलावा जितने हैं कैसा जानना है? यह मैं नहीं हूं ऐसा जानना है, नहीं तो हम उन्हीं के जानने में रुक गए हैं और उसी की महिमा आती है हमें। तो इत्यादि संबंधी, इत्यादि में बहुत सारी बातें और आएगी, निमित्त और उपादान है, निमित्त से ज्ञान होता है कि नहीं होता है, उस संबंधी जो कोई उपदेश है आदि में सब बातें आती है। अब ये तो विषय हुआ कौन से संबंधी विषय उपदेश, तो इन बातों संबंधी उपदेश देने वाले, अब उपदेश देने वाले कौन होने चाहिए? तो मूल में मूल भगवान अरिहंत भगवान यानी तीर्थंकर या अन्य सामान्य केवली जिनका उपदेश होता है, फिर गणधर या अन्य आचार्य उपाध्याय साधु पांचवे या चौथे गुणस्थान वर्ती, उसका अर्थ है ज्ञानी। यानी उपदेश किस संबंधी है? तो मोक्ष मार्ग स्वपर विद विज्ञान आदि आदि सभी हमने जो बातें देखी, उपदेश देने वाले कौन होने चाहिए? तो ज्ञानी। और ज्ञानी भी उपदेश अपने घर का नहीं देंगे, जो सर्वज्ञ भगवान से बातें चली आई है उन्हीं का उपदेश देंगे, जिसको हम आगम कहते। आगम किसको कहते? आगम जो चले आ रहा है, कहां से? तीर्थंकर भगवान की वाणी से जो बातें उसी मूल धारा में चली आ रही है उसको आगम कहते हैं। तो उनका समागम मिलना, तो ये तो बात हुई उपदेश और उपदेश देने वाले, उपदेश देने वाले भी मिले, उपदेश भी मिला, देशना लब्धि हुई कि नहीं हुई हर्षद भाई?
उपदेश मिला ज्यादातर ग्रहण नहीं
किया। हाँ बहुत अच्छा। तो उसमें क्या क्या आएगी? देशना लब्धि क्या है? ज्ञान की पर्याय। ये तो उपदेश देने वाला है और वो उपदेश दे रहे, पर हमें सुनना चाहिए। पहली बात, सुनने चलेगा? सुनने से, जैसे हमारा बच्चा वो पानी लाने के लिए सुना था उसने, तो समझना चाहिए। समझकर बात हो गई वहीं की वही, क्योंकि हमने सुना भी और समझा भी। चेतना बेन को पूछा, कल बात समझी थी ना? हाँ, मगर वो यहाँ की बातें हम यहीं छोड़ जाते, हम किसी की बातें घर नहीं ले जाते, तो क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुना है समझा है तो उसको याद भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस पर विचार करना है हमको, और केवल आपने बताया इसलिए नहीं हमको ग्रहण करना है, इसलिए नहीं हमको एक्सेप्ट करना है, हम उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, और यदि वो हमें सत्य भासित होता है तो ही उसको हम फॉलो करेंगे या उस पर हम और विचार करेंगे। और तभी जब आप अपनी बुद्धि से When we come to the conclusion, then only it is useful. तो उसके कौन कौन से अंग अर्थ होते हैं? देखो, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का अर्थात देशना का मिलना, मिलने में तो उपदेश मिला और ज्ञानी भी मिले, ये दो बातें हुए। अब आगे क्या होता है? उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना, उसको कहेंगे देशना लब्धि। अब उसके अंग कौन कौन से, उसके आगे के लाइन में लिखा है, देखो, उपदेश को देशना कहते हैं, और उस उपदेश को सुनकर समझना, ये सुनकर समझने की बात है। क्यों ऐसा लिखते हैं? अरे हम देखकर भी समझेंगे ना, पढ़कर भी समझेंगे कि नहीं समझेंगे? क्यों भाई प्रवीण भाई, पढ़कर समझेंगे कि नहीं समझेंगे? पढ़कर हम अपनी बुद्धि से जो हमें पहले पूर्व में कुछ ज्ञात है उस अकॉर्डिंगली हम उसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शब्द तो होते हैं लिमिटेड, संख्यात, और उसमें अर्थ होता है अनंत। तो अलग अलग अर्थों के लिए वे ही शब्द आते हैं और उन शब्दों को सुनते हैं हम, ये सारी पढ़ते हैं, तो अपनी बुद्धि से उसके अर्थ लग सकते हैं। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, पहले बताया था शायद मैं आपको कि मेरे पास जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो कॉलेज की लड़की आई, तो उन्होंने बोला कि आप हेयर स्पेशलिस्ट है ना, बाल के तज्ञ है ना, मैंने आपको किसने बताया? मैं तो नहीं हूं। आपने बाहर बोर्ड क्यों लिखा फिर? इंदुबेन बोर्ड पर क्या लिखा था? बाल रोग तज्ञ, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने तो बाल का अर्थ उन्होंने बाल लगा लिया। तो उसी अक्षर को पढ़कर उसका अदर मीनिंग भी हो सकता है। ऐसे ही शास्त्र में जो कोई बातें आती है तो उसका भी हम अपनी बुद्धि से कुछ अलग अर्थ लगाते, इसलिए सुनने का महत्व बहुत है। सुनकर जो समझा जाता है तो अपने अंदर की जो कोई कन्फ्यूजन्स है वो दूर होती है वहीं की वहीं। तो इसलिए कहा है सुनकर समझना, याद रखना और उसे पुनः पुनः विचारों में लेना देशना लब्धि है। अब उसके अंग कौन कौन से देखे? श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। ग्रहण, ग्रहण का अर्थ होता है समझना, इन्हें ज्ञान में लेना, उसको ग्रहण कहते हैं। धारण, धारण का अर्थ होता है कि केवल वो जानकर छोड़ना, इसे नहीं, वो अपने ज्ञान में याद रखना। आदि में और भी आ जाएंगे निर्धारण वगैरह, वो उसको हम बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं पृष्ठ संख्या है 80 होगी, अब मेन 83 है। हाँ, हमने ये बात देखी थी कि जिसको तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई है, मेरा अपना स्वरूप क्या है इस बारे में उसको रुचि जागृत हुई है, और अब उस जीव को देशना यानी ज्ञानी का उपदेश मिल जाता है। जहां रुचि हो वहां ज्ञानी का उपदेश सहज मिल जाता है। अब ये कंडीशन जो है कि बिना उपदेश के किसी को भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो तत्वार्थ सूत्र में तो लिखा है ना निसर्ग सम्यक दर्शन, तो उसका अर्थ क्या होता है कि उस भाव में कोई ज्ञानी नहीं मिला था, परंतु उसको पूर्व भाव की भी देशना हो सकती है। भाई गणधर की कल स्टोरी सुनी ना आपने, अवधि ज्ञान से इंद्र ने जाना, फिर इंद्रभूति को ले आए और फिर वो समोषण में आ गए, उनको किसकी देशना मिली और सम्यक दर्शन हुआ? बोलो जगदीश भाई, आप बोलो। इंद्रभूति को, अच्छा आप बोलो प्रवीण भाई, आप मदद करना। इंद्रभूति को देशना किसकी मिली?
तीर्थंकर की, जो टाइम जो था।
हाँ, तीर्थंकर की। हम और भी और किसी का कुछ विचार है तो हम देखेंगे उसको। वीना बेन,
रमेश भाई बोलना चाहते हैं।
रमेश भाई, हाँ,
महावीर
स्वामी की। आप क्या कहते प्रवीण भाई? इंद्र ने कुछ उपदेश दिया होगा उनको कि नहीं दिया?
इंद्र ने तो अवधि ज्ञान से वो जो
था, वो खाली उसको लाया था क्योंकि उसने इंद्र से चर्चा की ही नहीं। हाँ, आप क्या कहते भाई? अरविंद भाई,
ध्वनि से,
महावीर स्वामी के ध्वनि से। अभी आपने कहीं कुछ क्यों? नलिन बहन, आप ऐसा क्यों कह? पूर्व भाव की क्यों? देखो महावीर की ध्वनि मिथ्या दृष्टि के लिए छुटेगी कि नहीं छुटेगी? हमने पहले क्या देखा था? इतने दिन ध्वनि क्यों नहीं छूटी थी? निमित्त तरीके से उसके झेलने वाले वहां आचार्य नहीं थे कोई, गणधर जैसे। देखो ऐसा निमित्त ऐसा नियम है, ये धवला के नवे भाग में आई बात कि जो जीव तीर्थंकर के सामने दीक्षित होकर मुनि दीक्षा धारण करता है, सम्यक दृष्टि जीव हो, और उस वहां पर ही वो मुनि दीक्षा धारण करता है और वही जीव गणधर होता है। अब हमने देखा था कि वो जीव आया और मानस स्तंभ देखा और मान गल गया ने तब उनके समय दर्शन की प्राप्ति हुई। क्यों? जिन बिंब दर्शन से। हमने सुबह देखा था ना, जिन बिंब दर्शन भी निमित्त है। तो क्या देखने मात्र से उनको सम्यक तो हुआ नहीं, पूर्व भव की देशना तब याद आ गई। वह जीव पूर्व में 1000 वर्ष तक द्रव्यलिंगी मुनि था, देशना तब मिली थी परंतु तभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, तो मिथ्या दृष्टि होकर वो जन्मा था, अन्य मत में था और शुरू से वो गृहित मिथ्या दृष्टि था। यहां आने पर उसके तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अंदर समो शरण में चले गए, भगवान के सामने गए और मुनि दीक्षा अंगीकार की, और अंगीकार करते ही वहां प्रथम जो ध्यान अवस्था हो गई उनके, तब उनके सातवां गुणस्थान हुआ, सातवां छठा, और तब उनके इतनी सारी रिद्धियां वगैरह सब प्राप्त हुए एक साथ, मनोपरि ज्ञान भी प्रकट हुआ, चार ज्ञान के धनी हो गए। इतनी बुद्धि, एक केवल ज्ञान वाली जो बुद्धि वो छोड़कर बाकी सारी उनकी रिद्धियां प्रकट हुई, और फिर इतनी वो बुद्धि है तो वहां उनकी वाणी सहज रूप से खिल गई। ऐसा ही वो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। महावीर की वाणी से उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ख्याल में आया ना, क्योंकि बाकी तो वहां तो बाकी मुनि भी विराजमान थे कि नहीं थे। ये मस्करी गोशाल मालूम है कौन था? नहीं मालूम। वो समोशरण जो लगता था 66 दिन तक लगा, महावीर भगवान को केवल ज्ञान कब हुआ?
66 दिन पहले।
देखो वैशाख सुधी दशमी को, और उनकी दिव्य ध्वनि कब खिरी? आषाढ़ वदी एकम को। ये गुजराती वाली हो, हिंदी वाली नहीं? हाँ, कल उस दिन बात हुई थी ना। तो 66 दिन तक वाणी नहीं छूटी थी। तो ये मस्करी गोशाल नाम का वहां कौन था? मुनि था कोई? कौन था? महा पारसनाथ भगवान के गणधर का डायरेक्ट शिष्य था,
पट्ट शिष्य।
तो उनको ऐसा गुस्सा आया कि मैं इतना लायक जीव हूं, मैं गणधर नहीं, मेरे निमित्त से वाणी नहीं छूटी, और किसी अन्य जीव के निमित्त से। उसको भी गुस्सा आया और उसने भी वहां से जाकर दूसरी दुकान खोल दी। क्यों? देखो अभी हम देखते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज होता है उसकी बात चली है, यहाँ तो देशना लब्धि की बात हो रही है। हम 80 पेज पर पढ़ेंगे, आपके पास पुस्तक है भाई? हाँ। देखो जिन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता का पता नहीं है, कौन सा पैराग्राफ है? हाँ, मिल गया ना।
हाँ, 80
पेज।
हाँ,
पांचवा पैराग्राफ। हमारा विषय ये चल रहा है कि जिसके अंदर से जागृत होती है जिज्ञासा, उसको ज्ञानी भी और उसका उपदेश भी सहज प्राप्त होता है। तो जिसको ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध का पता नहीं है, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता का पता नहीं है, जहां जैसी योग्यता है वैसा निमित्त सहज होता है। हमें लगता तो है कि निमित्त से कार्य हुआ, अभी बात हमने स्टोरी सुनी तो गणधर के कारण वाणी छूटी कि नहीं छूटी? अरे उसके बिना नहीं छूटती थी ना। तो उस भाषा वर्गना का दिव्य ध्वनि रूप परिणमन करने का जो काल आया, तो उस समय क्या क्या निमित्त थे? भगवान महावीर ने क्या किया, वो निमित्त थे कि उपादान थे? उपादान थे। आप क्या कहते हैं प्रवीण भाई? शब्द भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित हुई, ये कार्य हुआ। उपादान कारण कौन है? भाषा वर्गना स्वयं परिणमित हुई। निमित्त कौन है? महावीर स्वामी, क्योंकि उनका वचन योग है ना वहां पर, और वहां भव्य जीव है जो सुनने के वहां पात्र सामने बैठे। अनेक निमित्त हो सकते हैं, एक ही निमित्त ऐसी बात नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। तो अब यहां हम देखते हैं, जिन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता का पता नहीं है, ऐसे कितने ही जीवों को प्रश्न उठता है कि, ये हम आपके सबके जो प्रश्न है, हमें ज्ञानी की देशना प्राप्त करनी है तो सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी सम्यक दृष्टि है यह हम कैसे पहचानेंगे? कोई लेबल कोई सिंह उगते हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा हम देखते हैं। मिथ्यात्वी जीव को ज्ञानी की सच्ची पहचान हो नहीं सकती, उसको ढूंढने की आकुलता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक बार कहते कि ज्ञानी चाहिए, एक बार ये यहां कहते आकुलता करने की जरूरत नहीं है। आकुलता इसलिए नहीं करनी कि सच्ची जिज्ञासा है और आपको देशना मिलनी है तो मिलकर ही रहेगी, तो वो निमित्त सहज उपलब्ध होगा, इसलिए कहते आकुलता मत करो। मिथ्या दृष्टि जीव तो अन्य जीवों की बाह्य प्रवृत्ति और क्रियाएं देखकर उनके द्वारा उनकी पहचान करना चाहता है। जो कोई उपदेश देता है वो क्या कहते हैं, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसे खाता है, क्या क्या करता है ना, तो उसकी पहचान कहां से करना चाहता है? बाह्य क्रिया से। हमने देखा था दोपहर को अविरत सम्यक दृष्टि जीव, उसको कितने प्रकार की विरति है, छह इंद्रिय संयम और छह प्राणी संयम, कितना संयम है उसको। चौथे गुणस्थान वाले को वो तो पूरा असंयम है, बारह प्रकार की अविरति अविरति है उसकी, यानी उसकी क्रियाओं में आपको कुछ मिलेगा नहीं कि कुछ हम ढूंढ ढूंढ कर इसके ज्ञानी की पहचान उसकी बाह्य अपीयरेंस से नहीं होगी। हाँ ऐसा नहीं होगा कि वो के सप्त व्यसन करता होगा, कुछ वो बात नहीं है वहां पर अन्य कुछ वो व्रतादि करता होगा या ऐसी कोई बात वहां नहीं होगी। सामने वाले जीवों के अभिप्राय का या अभिप्राय ने श्रद्धा सम्यक दर्शन का इसे पता नहीं चलता। हमें तो उपदेश की सत्यता को पहचानना है, वो जो सामने वाला जीव है वो किस प्रकार का उपदेश दे रहा है, वो सुनकर अंदर से जिसको अभी देशना लब्धि का समय आया है उसको अंदर से प्रतीति होती है, नहीं ये बात यहाँ जो कोई है वो सत्य है, मैं अब तक जो समझता था वो कुछ उसमें गड़बड़ी थी और ये बात आज सत्य मुझे सुनने को मिली, उसको अंदर से ऐसी प्रतीति हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। तो कहते हमें तो उपदेश की सत्यता को पहचानना है, क्योंकि ज्ञानी जीव भी जो उपदेश देते हैं वह सर्वज्ञ के वचन के अनुसार देते हैं, अपने घर की अपनी कल्पना की बातें नहीं करते। जो अपने कल्पना से कुछ कुतर की बातें करता हो और जो आगम के विरुद्ध हो वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी जीव आत्मानुभूति वाले भी है तो उनके कुछ आत्मानुभव में तो कुछ अंदर ऐसे आत्मा असंख्यात प्रदेश है और उसके इतने गुण है अनंत और ये ऐसी पर्याय ऐसा कुछ नहीं, उसने जो कुछ जाना है वो आगम के द्वारा ही उसके ख्याल में आया है और वो आगम के ही बातें समझाता है। अब हम आगे देखते हैं। शास्त्र पढ़ने वाला भी प्रारंभ में कहता है, आपने शायद ऐसा सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा, यानी इस ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ भगवान है। तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा, यानी इसके उत्तर करता, उत्तर यानी उसके बाद में ग्रंथ के कर्ता है वे गणधर देव है, अर्थात इस ग्रंथ के मूल कर्ता श्री सर्वज्ञ भगवान है। उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर पश्चात ग्रंथों की रचना करने वाले श्री गणधर आचार्य है। उनके उपदेश के अनुसार आचार्यों की परंपरा से कंटिन्यूस हो, जो आचार्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, इसको कहते परंपरा। जो ग्रंथ रचे गए उनमें से इस विशिष्ट ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रोताओं सावधान होकर सुनना। ये तो हिंदी में लिखा है मगर मूल में ऐसे पूरा संस्कृत का पढ़ा जाता है। आगम का वचन सर्वज्ञ भगवान का होता है, किसी वक्ता का नहीं होता, वह तो वस्तु स्वरूप संबंधी सच्ची जानकारी है। हम आगम पढ़ते हैं उसका अर्थ क्या है, हम जो छह द्रव्य उसका स्वरूप देख रहे हैं, गुण पर्यायों का स्वरूप देख रहे हैं, वो क्या है, वस्तु स्वरूप की सच्ची जानकारी है। अभी ये जो है ना, कोई वक्ता के बिहेवियर के अनुसार उसके अपीयरेंस के अनुसार उसको हम इसका उपदेश का सच्चा है कि झूठा है ऐसे हम ट्राई टू फाइंड आउट, मान लेते आपको अरविंद भाई किसी ने 1,00,000 रुपए ड्राफ्ट से भेजे, तो आपका कुरियर लेके आया आपके घर में। अब यहाँ की बात मालूम नहीं, हम इंडिया की बात करेंगे। तो हमने देखा वो कुरियर वाला जो लाया है ना, तो उसके कपड़े फटे पुराने थे, वो बैग भी फटी हुई थी, चप्पल भी पहन के आया था कैसे भी। ये तो आदमी 1,00,000 का ड्राफ्ट नहीं ला सकता। आप लोगे कि नहीं लोगे उसके हाथ से? क्यों?
उसका कपड़ा और उससे क्या निकलता
है? अरे वो तो लाने वाला है। वो भेजने वाला कोई और है, ख्याल है ना? वो उसका नहीं है, वो तो बस कुरियर है, पोस्टमैन है, जो कोई है। तो वैसे ही ये जो उपदेश देते हैं वो आगम का उपदेश देते, अपना नहीं देते। क्या वो आगम के अनुसार है कि उसमें कुछ बीच में मिलावट हुई है, इतना हम देख सकते हैं। परंतु वो उस आदमी का उपदेश नहीं है, उसका अपना नहीं है, वो भगवान की वाणी आपके पास लेके आया, कुरियर है वो। आगे का पैराग्राफ, तुम कहोगे हम ज्ञानी को नहीं पहचान सकेंगे। अब बेटी बोल रही है ज्ञानी को तो हम नहीं पहचान सकेंगे, ये मान लिया। परंतु अभी अभी आपने कहा था हमें तो उसके उपदेश की सत्यता को पहचानना है। किसी का उपदेश सच्चा है या झूठा उसको हम कैसे पहचानेंगे? देखो ये मूल की बात है, जो हमारे मन की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले में पहले ज्ञानी की देखना चाहिए, आवश्यक कंडीशन है। तो हमें ऐसा लगता है ज्ञानी को कैसे ढूंढेंगे। दूसरी बात, अभी ढूंढ नहीं सकते कहे तो उसका उपदेश तो सत्य है कि नहीं सत्य, तो उसको कैसा पहचानेंगे? तो थोड़ी उसके लिए यहाँ चर्चा करते। देखो, जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, यानी कौन सा उपदेश झूठा है उसकी बात चल रही है। जिसके उपदेश में राग का, राग यानी कौन सा, वो राग यानी राग, वो शुभ हो या अशुभ हो, राग का पोषण होगा। निमित्त से कार्य होता है, इसलिए निमित्तों को पहले ढूंढो, पहले गुरु को ढूंढ लो। अरे गुरु तो तब कहेंगे ना जब हम शिष्य होकर उसके पास से कुछ सीखेंगे, तब उसको हमारा गुरु कहेंगे। कि गुरु नाम की कोई व्यक्ति नहीं होती है। देखो हम टीचर किसको कहेंगे, स्कूल में जाते हैं उनसे कुछ सीखते हैं तो हम कहेंगे नहीं ये हमारे टीचर है, इनसे हम ये बात सीखे। हमने कुछ सीखे ही नहीं हम किसी से कुछ, तो उनको हम टीचर भी कैसे कहेंगे। ऐसे ही यहाँ निमित्त को पहले ढूंढो, ऐसा कहने वाले भी होते हैं। यानी कौन से उपदेश झूठे हैं ये बात यहाँ बता रहे। शुभ भाव करने से तुम्हारा कल्याण होगा, पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा जो कथन करते हैं। देखो जिसके कथन में दो चार भी बातें या एक भी बात झूठ आती है उसका संपूर्ण कथन खोटा होता है। क्यों? अभी अरविंद भाई ने इतना वो तपेला भर के दूध लाया है, अब कल बासुंगी, आप आना सब लोग। करते करते उसमें एक बूंद इतना साइनाइड गिर गया एक बाजू में, तो वो चम्मच से थोड़ा निकाल के फेंक दिया बाहर जाके। बाकी हम पियेंगे कि नहीं पियेंगे? क्यों हर्षित भाई नहीं पिए? थोड़ा सा ही बूंद ही पड़ा है उसमें, ज्यादा नहीं।
मालूम नहीं कितना अंदर,
मालूम नहीं। वो तो हम रिस्क लेना नहीं चाहते ऐसा कहते हैं। परंतु हम जो कहीं कहीं उपदेश चलता रहता है, टीवी पर भी आता है, केबल पर भी आता है, वो क्या कहते हैं, अरे हम उसमें से अच्छा अच्छा लेंगे। जिसको अभी उपदेश की सत्यता का पता नहीं है, सच क्या है झूठ क्या है पता नहीं है, उसको ये कुछ अच्छा बिच्छा नहीं उसमें से निकाल सकता हो, ख्याल है ना? जिसमें एक भी बात झूठी है उसका पूर्ण उपदेश त्यागने योग्य है। तो क्या कहते हैं, पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, या बड़े ग्रंथों का शास्त्र स्वाध्याय मत करना वह तुम्हारा काम नहीं है। ये आजकल हिंदुस्तान में बहुत चल रहा है। क्या कहते हैं, बड़े ग्रंथ समय सारादि ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना, ये श्रावक का काम नहीं मुनियों का काम है, ऐसा भी कहने वाले हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मत पढ़ना, क्यों? ये पढ़ जाओगे तो सच्चाई का पता चल जाएगा, ऐसा कहते हैं, तो अपनी पोल पट्टी खुल जाएगी ना, इसलिए उसका निषेध। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने वाले जो पंडित टोडरमल जी है, तो उन पर कैसा उनका देहांत हुआ पता है आपको? हाथी के पाव के नीचे ऐसा सम्य दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती जीव क्यों? क्योंकि इतनी सच्ची बातें लिखी है। अन्यमति की तो बात छोड़ो, दिगंबर जैनियों में भी हलचल मच गई थी और उनके बारे में कंप्लेंट की थी, खोटी कंप्लेंट राजा के पास, और राजा ने उनको कैद करके देहांत की सजा फरमाई थी। बाद में पता चला था उस राजा को, बहुत पछतावा हुआ था। वो सब लिखित रूप से है, वहां जयपुर में बातें लिखी हुई है। तो इतनी डंके की चोर बातें अन्यमतियों के तो ठीक है ना, वो तो हम यानी जैन धर्म सच्चा बताने वाले तो सब है, परंतु जैनियों में ही कैसे कैसे बातें चलती है इसका संपूर्ण उन्होंने वहां दिग्दर्शन किया, पूरा पिक्चर यहां तक लिखा। मंदिर में बैठते है, यहां पूजा चल रही, मुंह से पूजा करते है, और फिर कहा वो आने कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, ये सब ऐसी भी बातें लिखी उसमें। तो उनके कितने शत्रु हो गए, सत्य कहने वाले के भी हो जाते हैं ना। फिर ये मत पढ़ना, ऐसा भी कहने वाले हैं, ऐसा भी कहते हैं ये मुनियों का थोड़ा, ये तो गृहस्थ ने लिखा है। अरे गृहस्थ की क्या कैपेसिटी थी मालूम है आपको? सम्यक ज्ञान चंद्रिका और त्रिलोक सार जैसे ग्रंथ लिखे है, गुमर सार की पूरी टीका लिखी इन्होंने ढूंढारी भाषा में।
पढ़ते।
आपके पास है ना अभी जो हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने किया उसका, उसी के ऊपर से किया था। तो इतने गजब की उनकी बुद्धि थी तब की। तो संस्कृत कैसा लिखा था? कन्नड़ लिपि, रिटन लिपि कैसी? कन्नड़, और भाषा संस्कृत। कब सीखे होंगे पता नहीं, रहने वाले जयपुर में। साउथ में तीन आदमी भेजे थे तो जाते जाते एक मर गया, और वहां दो गए तो वहां तो धवला वगैरह जो शास्त्र थे तो दर्शन मात्र के लिए थे, तब कोई उपलब्ध नहीं थे, वापस लौट आए थे। फिर भी इन्होंने उस कन्नड़ लिपि का अर्थ संस्कृत समझकर उसके ढूंढारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया। उनको भी बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि लोग समझते थे कि ग्रंथ होना चाहिए तो संस्कृत और प्राकृत होने चाहिए, आप अपनी भाषा में ग्रंथ लिखते हो, तो उनका निषेध हुआ था समाज की ओर से भी, बड़े बड़े पंडितों की ओर से भी। तो उनकी यही भावना थी कि जनसामान्य, सामान्य से सामान्य आदमी इन अपने सारे ग्रंथों को समझे। कितना सरल करके उन्होंने उसमें समझाया है। देशी भाषा में लिखने वाले वे पहले थे, बाद में तो अभी कितने ट्रांसलेशन हिंदी, गुजराती, मराठी सभी भाषाओं में हो रहा है, परंतु उन्होंने जो गजब का कार्य किया है, पूरे गोमर सार की उन्होंने वो लिखी है भाषा टीका, फिर लब्धी सार की, सपना सार की, त्रिलोक सार की, बड़े बड़े ग्रंथों की उन्होंने लिखी, कितने सारे ग्रंथों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, और वो देशी भाषा में किया है।
कितना, 400 साल पहले?
हाँ 300 साल, 300 भी नहीं हुए पूरे तब हुए थे,
250 से ऊपर, 300 से कम,
250 से 300 साल के बीच में। तो उनके उद्धरण इसमें भी बहुत आए, और बार बार हम देखते हैं ना, अन्य भी जितने प्रवचनकार है वो बार बार ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, क्यों आपको तो जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान भी उन्हें निजी स्वाध्याय में डेली मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे, कितनी बार उन्होंने स्वाध्याय किया है तो भी, इसको 10-10 25-25 बार पढ़े तो भी कम है, इतने महान ग्रंथ है ये। हाँ देखो तो क्या कहते हैं कि बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय मत करना, वह तुम्हारा काम नहीं है। आदि बातें जिसके कथन में आती हो, एक बात। दूसरी क्या है, जो स्वयं उच्च पदवी धारण करके, उच्च पदवी ने हम, आप तो गृहस्थ है, गृहस्थ से उच्च पदवी कौन सी है? व्रती है, मुनि है। तो मुनि जैसी पदवी धारण करके, मुनि जैसा वेश धारण करके स्वच्छंद आचरण करता हो, जैसे आगम में बताया है वैसा आचरण न करता हो, कुदेवादिकों के पूजा सत्कार का उपदेश देता हो, यानी कोई अभी वो नवग्रह की पूजा का उपदेश बताए, कोई देवी देवताओं का पूजा का, यानी ये तो इवितराग सर्वज्ञ देव ही पूजन के योग्य होते हैं, अन्य नहीं, ऐसे होते हुए भी अन्य देवी देवताओं के उपदेश का जो उपदेश देता है उसको वो पुष्टि करते हैं। स्वयं शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो, लोगों को उकसाकर द्वेष बुद्धि निर्माण करके समाज में कलह पैदा करता हो, उसका सभी उपदेश झूठा है। क्या है? उतना मात्र उपदेश झूठा ऐसा नहीं कहा, संपूर्ण उपदेश। झूठा उपदेश देने वाले भी शास्त्र में से कुछ शब्द कहकर भी मिथ्या मान्यताओं का ही प्रचार करते हैं। कुछ लोग कहते हमें क्या लेना देना, उनके उपदेश में से हम केवल अच्छी बातें ग्रहण करेंगे। ऐसे कहने वाले मिलते हैं कि नहीं मिलते? क्यों भाई, आपको यहाँ तो कोई नहीं है, तो अच्छा है, यहाँ पर किसी झंझट में नहीं है, बस अपने आप शास्त्र स्वाध्याय करो, इस समाज में से ऐसी उठपटांग बातों से आपका कोई संबंध नहीं है, आप बहुत सुखी हो यहाँ पर। परंतु यह बात सर्वथा अयोग्य है। लौकिक बातों में यह जीव कितना चतुर है, वहां तो बिल्कुल एकदम कोई फंसाने वाली बात हो तो चौकन्ना रहता है सब बारे में, परंतु इसके बारे में अविवेक करता यह बड़ा आश्चर्य है। यह भी दूध की बातें हमने देखी थी यहाँ पर, अब आगे बढ़ते आगे का पैराग्राफ। परंतु जिस उपदेश से अनेक भवों का नुकसान होता है, वो हमने जो देखा था ना, जहर पड़ा हुआ दूध, वो पियेंगे तो क्या होगा, एक भव खत्म होगा। और ये झूठा उपदेश, खोटा उपदेश सुनेंगे तो क्या होगा कि जिस उपदेश से अनेक भवों का नुकसान होता है और जीव जन्म मरण के फेरों में अटक कर अनंत काल तक निगोद में जाता है, उस उपदेश को वह भला जानकर सुनता है, उसके अनुसार गलत मार्ग पर चलता है, उसकी ऐसी ही होनहार होगी कि उसकी ऐसी विपरीत बुद्धि हो रही है। ऐसे जीवों को देखकर हम क्या कर सकते हैं, समझ लेना कि उनका भी कुछ आगे का मार्ग ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उनकी ऐसी विपरीत बुद्धि हो रही है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव की, यानी चौथे गुणस्थान वाला जो ज्ञानी है, उसकी पहचान उसके बाह्य आचरण से नहीं हो सकती। अनुव्रत और महाव्रत के धारी ज्ञानी जीवों के व्रत तो हम जान सकते हैं क्योंकि वो बाह्य में भी दिखाई देते हैं, परंतु इन सबकी वाणी, सबके ने चौथे गुणस्थान वाला हो, पंचम गुणस्थान वाला हो या मुनिराज हो, इन सबकी वाणी मुझे स्वयं को कल्याणकारी है या नहीं, इस बात का विश्वास देशना लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को अवश्य होता है। सभी को नहीं भी होगा, पर हमने क्या देखा, जिसकी अभी देशना लब्धि होने वाली है, जिसकी ज्ञान की पर्याय अभी सही जानने वाली हो, उसको ज्ञानी की और उसके उपदेश की भी पहचान हो जाती। अभी ज्ञानी की तो अलग रखा, अभी हम उपदेश की चर्चा कर रहे हैं। यह वाणी, यह उपदेश यदि जिनेन्द्र कथित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होगा, भावलिंगी संतों के शास्त्रानुसार कथन किया होगा, तो वह निश्चित ही जीव को हितकारी होता है। परंतु कोई वक्ता जिनागम के विरुद्ध उपदेश देता हो तो वह स्वयं का तथा उसके अनुयायियों का अकल्याण करता है। किसका? दूसरों, वो स्वयं का पहले में पहले अकल्याण कर रहा है। उसको लग रहा है कि वो बाह्य में कोई फेम यश वगैरह मिल रहा है, लोग उसके पीछे है, वो बहुत बड़ा समाज में मान मिलता है, परंतु वो तो एक भव के लिए कुछ उसको थोड़ा ऐसा लगता है बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु उसके आगामी भव कहाँ कहाँ पड़े हैं तो उसका विचार भी आता है तो दुख होता है, क्या करें। शास्त्र में उसे उपल नाव कहा है। उपल मैंने मालूम है क्या उपल नाव? पत्थर की। कौन से शास्त्र में लिखा है उपल नाव? हाँ हाँ, नहीं तत्वार सूत्र में नहीं लिखा। हाँ नलिनी बहन, चढ़ाला पड़ी है, उपल नाव यानी पत्थर की नाव, पत्थर
उपल हीरा जैसा होता
है। उपल एक रत्न का नाम है, वो भी पत्थर है ना, क्योंकि भाई डायमंड वाले कौन है यहाँ पर। हाँ, उपल नाम का हीरा है जो कोई है, यानी कीमती पत्थर, पत्थर ही कहेंगे ना आप, स्टोन्स कहे थे ना, हम पत्थर कहेंगे तो आपको गुस्सा आता है, आप स्टोन्स कहते तो अच्छा लगता है। प्रेशियस स्टोन, अच्छा प्रेशियस में प्रेशियस स्टोन के नाम बताए, नाव बनाए हमने, किसी बनाई, प्रेशियस स्टोन्स की नाव बनाई,
नौका
बनाई, और वो अभी हम ये पैसिफिक समुद्र में बीच में ले गए, हेलीकॉप्टर से रखी, उसमें भी बैठने को कौन कौन तैयार है, हम अभी छोड़ने वाले। हाँ नहीं, वो नौका तो डूबेगी ही डूबेगी, उसमें बैठने वाले भी डूबेंगे, ऐसे ही ये कुगुरु तो स्वयं डूबेगे ही डूबेगे, वो तो निगोद में जाने ही वाले हैं। अरे परंतु उसका उपदेश लेने वालों को साथ में लेकर डूबेंगे वो, जी उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं और किसके पीछे पागल, बस बाह्य वेश को देखा या बाह्य त्याग को देखा और बस लग गए पीछे। अरे क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या उनका आचरण सही है, कोई कोई उसके बारे में विचार नहीं करता। और अचरज लगता है कि ये इतने बुद्धिमान है, इतने लौकिक में सियाने लोग है और ऐसे कैसे करते हैं, रियली इतना दुख भी होता है और अचरज लगता है। ये सारा जो लिखा था ना, तो मैं ऐसे कहाँ गए थे, देउलगांव राजा में गांव का नाम है, और वहां ऐसी सारी माहौल परिस्थिति देखकर ये सारा इसमें आ गया है वर्णन, जब मैं पुस्तक लिखती थी तभी की बात है। देखो क्या कहते हैं, हो गए
उदाहरण, हाँ 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 क्या हुआ था
ये कहते हैं वहां क्या क्या हुआ था वो उदाहरण देता। अभी वहां ऐसे ही जो कोई हम देखते ना, क्या लिखा था मैंने अभी, ये बड़ा नाम धरने वाले, उच्च पदवी धारण करने वाले थे वहां कोई आए हुए, और लोगों को उकसाते थे, इतना उकसाते थे और कैसा भी उपदेश देते थे, वो तो कहते थे मैं ऐसा करूंगा कि घर घर में आग लगाऊंगा, एक और पत्नी एक और पति, ऐसे उनमें किसके बारे में, ये धर्म के बारे में, तत्व के बारे में इतना मतभेद, माँ एक और तो बेटी एक और, तो भाई एक और तो बहन एक और, इतना कि माँ मर गई तो बेटी देखने को भी नहीं गई, इतना द्वेष बुद्धि पैदा की उन्होंने,
बाजू के बंगले में रह गए।
तो ऐसा देखकर इतना दुख हुआ था वहां, तो सारा वातावरण देखकर, ये धर्म के नाम धर के ये ऐसे ऐसे उपदेश और प्रतिज्ञा देते थे, अब यहाँ जो शास्त्र वाचन चल रहा है वहां जाना नहीं, उठकर खड़े हो और प्रतिज्ञा ले लो, ऐसी ऐसी बात है।
और वो हमारे यहाँ आते थे और हमको बोलते थे हमको ऐसी प्रतिज्ञा दी,
क्या करें, वहां की बातें नहीं लाना चाहती मैं अब हम देखा देखा तो ये पत्थर की नाव पानी में स्वयं तो डूबती ही है, उसमें बैठने वाले जीवों को भी लेकर डूबती है, उसी प्रकार खोटा उपदेश देने वाले और उस उपदेश को योग्य समझकर ग्रहण करने वाले सभी जीव भवसागर में डूबकर कालांतर में निगोद अवस्था प्राप्त करते हैं। ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है कि उपदेश की सत्यता को पहचानना, यदि उसमें कोई डाउट लगे तो हम स्वयं उसकी खोज करनी चाहिए, उस पर बार बार विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, अन्य हमारे कोई साधर्मी उनके साथ चर्चा करके निर्णय करना अपना कार्य है कि सही उपदेश को ही ग्रहण करें। कुछ कषाय जीवन ने मूल शास्त्र में फेरफार करके रागादि का पोषण करने वाले, मिथ्या मान्यताओं का पोषण करने वाले कितने ही वचन शास्त्र में घुसेर दिए हैं, परंतु ज्ञानी जीव इन वचनों का निषेध करते हैं, विवेकी बुद्धिमान जीवों के वह ख्याल में आता है हमारी भी कोई दिशा भूल न करे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमें उस संबंध में दक्षता रखनी चाहिए। आजकल लौकिक दैनंदिन व्यवहार में छल कपट करने वाले ठगाने वाले बहुत लोग हैं, सोने हीरे के गहने कपड़े खाद्य पदार्थ आदि में कुछ मिलावट तो नहीं है ना, इसके बारे में हम कितना जागरूक रहते हैं, उसी प्रकार की जागरूकता देशना के बारे में रखनी होगी। अन्य बारे में तो हम बहुत केयरफुल होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तो हमारे अपने कल्याण की बात है, भवों का अभाव करके मोक्ष प्राप्त करने जैसी महान बात है। अब आगे का प्रश्न, तुम कहोगी सच्चे वक्ता और सच्चे उपदेश का स्वरूप तो ख्याल में आ गया, आई होप सो, परंतु गुरु को सर्वस्व समर्पण करना होगा ना, आपने सुना है कि नहीं ऐसा कभी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने तो कहीं ऐसा सुना है, समर्पण किसका करोगी, सर्वस्व देना है ना, अपना सब कुछ देना है, तन मन धन जो पर पदार्थ है उनका समर्पण करना तो सर्व पर समर्पण है। सर्व स्व समर्पण कहाँ रहा? और पर पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं, इसलिए उनका समर्पण अपने अधीन नहीं है। हे जीव, तुम तो चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्राभ्यास में लगाना, तत्व निर्णय में अपनी सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति को कुछ देना वो सर्वस्व समर्पण नहीं होता। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हुए, ये सम्यक तो सन्मुख क्या होता है? मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि, अभी उसके ये लब्धियों की प्राप्ति हुई है और वो तत्व विचार करने वाला जीव है, उसके बारे में पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा है उसको हम देखते हैं उनकी भाषा में। सच्चा उपदेश सुनकर यह जीव सावधान होकर विचार करने लगता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, अभी तक ये बातों की खबर नहीं थी ना, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय ही में, पर्याय किसको कहना है? मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, इसको पर्याय कहते हैं, यानी मैं मनुष्य हुआ हूं अभी तो उसी में प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, यानी उस रूप अपने को माना, बस मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, ऐसा इसने कभी सोचा नहीं था, कभी सुना नहीं था, तो प्राप्त पर्याय ने मनुष्य पर्याय में ही तन्मय होकर रहा था। परंतु इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है, मनुष्य पर्याय कितने काल तक टिकेगी? हम तो रोज देखते हैं हमारे उम्र के या हमारे छोटे उम्र के भी लोग देखते देखते मरण को प्राप्त होते हैं, मनुष्यपना छोड़कर और भाव में चले जाते हैं, थोड़े ही काल की स्थिति। तथा यहां मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, सर्वनिमित्त मिले हैं, कौन सा जीव है? सम्यक तो सन्मुख। सर्वनिमित्त मिले ने देशना भी मिली है, ज्ञानी की देशना, सच्चा उपदेश मिला है। और ऐसा नहीं है कि इतनी तो परिस्थिति नहीं है कि अभी मुझे सुबह खाना खाए तो शाम को नहीं मिलेगा, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। इतना धन है कि सात पीढ़ी भी बैठकर खाए तो इसके काफी है, ऐसी कोई इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कहते मुझे तो सर्वनिमित्त मिले है, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। किन बातों को? जो उपदेश सुना है उसको, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है, इसमें किसी समाज के लिए, कुछ अन्य अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए कुछ नहीं है। जो कोई उपदेश है बस अपने लिए है, क्योंकि इसमें अपना ही कल्याण है और किसी का भी नहीं है। हम जो बात मानते हैं वो दस लोग ज्यादा मान लेंगे तो उसमें कुछ अपना भला बुरा उसमें कुछ नहीं है। अब यहां निर्धारण की बात करेंगे। देखो ये हमने देशना लब्धि के जो अंग देखे अभी तक, पहले में पहले सुनना, उसको कहा श्रवण, दूसरा कौन सा लिखा है? ग्रहण यानी समझना, तीसरा है धारण यानी याद करना, यानी याद में रखना। क्योंकि क्या है, जो अभी तत्व हमने सुने हैं, जैसे हमने अस्तित्व गुण सुना, उसकी परिभाषा हमने याद रखी है, फिर उस पर विचार चलेगा। हमने कोई वो सूत्र देखा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षण, तो उस पर हमने सुना है, उसका अर्थ समझा है, अब उस पर हमारे विचार चलेंगे। तो यदि याद में ही नहीं रखा तो हम विचार किस पर करेंगे? इसलिए ये धारण वाला वो बात भी महत्व की है। और उसके आगे वाला क्या है? निर्धारण। निर्धारण किसको कहते हैं? निर्णय करना, टू कम टू द राइट कंक्लूजन। जैसा वहां बताया है वैसा ही हमारा अगर अपने विचार सहित हो तो हम उसको निर्धारण कहेंगे। जैसे वहां तो लिखा है, हम तो कंक्लूजन में आए, कैसा ये बात झूठी है ऐसा कंक्लूजन किया, तो क्या वो सही है? जैसे जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसा हमारा निर्धारण होना चाहिए, वैसे हमें परीक्षा सहित निर्णय करना चाहिए। देखो जब हम स्कूल में थे ना तो गणित के पुस्तक है, आपके सब आपने सब अनुभव किया था, तो यहाँ कोई एक फॉर एग्जाम्पल दिया होता है, सॉल्व करके बताते हैं और फिर वो हमें प्रश्न वहां डाले जाते हैं तो हमें वो सॉल्व करने होते हैं, तो हम पहले में पहले वो गणित सॉल्व करते हैं और फिर पीछे उत्तर देखते हैं ना, तो फिर मिलान करते अपना उत्तर और वो उत्तर है कि नहीं बराबर सही। तो कभी कभी क्या होता है वहां उत्तर कुछ और लिखा है और हमारा कुछ अन्य आता है। तो इंदुबेन आप क्या करती थी तभी, या अभी समझो मान लेते हुआ तो क्या करेगी आप?
फिर से सॉल्व करेगी।
कब तक? जब तक वो वैसा उत्तर नहीं आता। समझो नहीं आया तो क्या करेगी? फिर हम क्लास में अन्य फ्रेंड्स को पूछेंगे। नहीं हुआ तो क्या करेंगे? टीचर को पूछेंगे। तो आप कहेंगे अरे सीधा साधा सॉल्यूशन था उसके लिए, जैसा अपना उत्तर आया ना वहां पुस्तक में करेक्शन कर दो ना। ऐसा नहीं चलेगा। तो जब तक वैसा उत्तर नहीं आता, सही उत्तर नहीं आता, तो हम बार बार कोशिश करेंगे और हमसे नहीं बनता तो हम जो अन्य जो उस संबंध में जो कोई जानकार है उनकी सलाह लेंगे। यहां भी ऐसा ही करना है। जैसे जिनेन्द्र भगवान ने हे यज्ञ उपादेय आदि सारी बातें बताई है, जैसे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, स्वपर का स्वरूप सब बताया है, वैसा जब तक हम अपनी बुद्धि से हमारा वही उत्तर नहीं आता है तब तक हम स्वयं विचार करके उस निर्णय तक पहुंचना चाहिए। तब तक विचार चलेगा। अब यहां देखते हैं, निर्धारण करने के तीन अंग है, यानी उसके तीन भेद हैं। उसका पहला है उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ क्या है? नाम सीखना। जैसे हमें सम्यक दर्शन के बारे में जानना है तो सम्यक दर्शन ये नाम हमने सीखा, यह हो गया उद्देश्य। हमें जीव द्रव्यों के बारे में जानना है तो जीव द्रव्य ये नाम हमने सीखा। द्रव्यों के नाम कितने हैं? छह नाम है, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल। ये हुए उद्देश्य, ये हुआ नाम सीखना। दूसरी क्या बात है? लक्षण निर्देश, अर्थात उनके लक्षणों को जानना। अभी हमने छह द्रव्य सीखे, नाम सीखे, अब क्या सीखेंगे? उनके लक्षण। जीव द्रव्य किसे कहना? जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण है वो जीव द्रव्य। उद्गल द्रव्य किसे कहना? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, यह है लक्षण निर्देश। इतना आसान है। अब क्या कहते हैं? विचार सहित परीक्षा करना। जैसे हमने आज दोपहर में वो तत्वों की बात देखी ना, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव आदि जो है। आश्रव, आश्रव को दुखमय कहा है, शुभाशुभ राग को दुखमय कहा, दुख का कारण कहा। क्यों? उससे कर्म बंद होता है और फिर उसके उदय में फिर जीव राग द्वेष करता है। तो क्या ये सही है कि नहीं है, इस पर अपने विचार चलेंगे। इसलिए कहते तीसरा पॉइंट कौन सा है? विचार सहित परीक्षा करना, अर्थात ये तत्व ऐसे ही है या नहीं इस बात पर विचार करना। जब तक जिनेन्द्र देव ने जैसे तत्व कहे, जैसे ने अभी बात हुई ना, आश्रव है वो दुखमय है, आश्रव और बंध छोड़ने लायक है, संवर और निर्जरा प्रकट करने लायक है, जैसे कहे है उसी प्रकार अपना निर्णय नहीं हो जाता तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करें। यदि संदेह हो, यानी कोई उसमें शंका हो, तो अपने गुरु से या अन्य विद्वानों से पूछे या अन्य साधर्मियों से पूछे। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है। आगे की एक महत्व की बात है, यहां अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना, क्योंकि पहले से कोई ना कोई मान्यता लेकर आया है जी। अभी मिथ्या दृष्टि है, इसका अर्थ हाँ यहां इस कहीं ना कहीं उसकी भूल हो रही है ना, तो पुरानी जो कोई गलत मान्यता है उसका पोषण नहीं करना है उसको। परंतु जिनदेव ने बताए हुए तत्वों पर अनुमानादि द्वारा, अनुमानादि ने अनुमान, जैसे ये जो ज्ञान के प्रकार है, तर्क है, अनुमान है, न्याय है, जो आगम है, आगम में क्या लिखा है, फिर ये सही लगता है कि नहीं, इस तरह से उस पर अनुमान लगाना। जैसे आपने सुना कि द्रव्य और गुण का नित्य तादात्म्य में संबंध होता है, तो अनुमान लगाएंगे। फिर अग्नि का उदाहरण भी है, अग्नि और उष्णता का तादात्म्य में संबंध है, उससे वो कभी दूर नहीं किया जा सकता, उस पर हम विचार करेंगे या क्या सही लगता है कि नहीं लगता। ये तो फॉर एग्जाम्पल बता दिया। वैसा ही निर्णय हो जाए उस प्रकार विचार करना है। ये गणित की बात तो अभी हमने देखी थी। उसके आगे का पैराग्राफ, देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती है। सारी बातें कौन सी? ये सारे श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण, ये जो बार बार उस पर विचार करे, ये सारा देशना लब्धि है। देखो देशना लब्धि कितने साल से है आपको कोई पूछेगा तो कहेंगे हमने तो ज्ञानी को सुना है ना, कब से सुना? अरे हमने 20 साल से उनको सुना है। तो 20 साल से देशना लब्धि है कि नहीं है? देशना लब्धि कब से है? उसका काल कितना हो सकता है? अंतर्मूल। क्यों? यहाँ तो हमने ज्ञानी की देशना सुनी है ना। अरे सुनी है मगर अभी वो सुनी है ना, अभी शास्त्र स्वाध्याय सुनते थे तब तक तो देशना लब्धि में थे मान लेते हैं, बाद में कहाँ चले गए? व्यापार करने चले गए। तो अन्य अपने वही विशुद्धि वगैरह रही कि नहीं, कि संकलेश लोभ वो बाकी सब चालू हो गया कि नहीं हुए? तब उसकी ना कोई क्षोभम लब्धि है, ना विशुद्धि लब्धि है, ना देशना लब्धि है। जिस काल में वो तत्व विचार फिर मान लेते, दिन भर व्यापार किया फिर शाम को एकांत में बैठकर फिर विचार करने लगा, तो फिर उसके एक साथ क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि शुरू हो जाएगी और वो तत्व विचार में लीन हो जाएगा तो आगे की प्रायोगिक लब्धि भी होगी। और हो सकता है उसके सम्यक्त्व का उस समय वो आया है काल तो करण लब्धि में भी चढ़ गया है और सम्यक्त्व भी प्राप्त करेगा, तो सभी वो लब्धि एक साथ होगी, चारों एक साथ उसकी। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं और है 5 मिनट देखें। देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती है। देशना लब्धि द्वारा जीव तत्वों का श्रवण करता है यानी सुनता है, उसका ग्रहण करता है अर्थात समझता है और धारण करता है अर्थात अच्छी तरह याद रखता है, कंठस्थ करता है। यदि उपदेश को धारण नहीं करेगा तो बाद में उस पर विचार करके उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कैसे करेगा? जिस तरह गाय घास खाती है और बाद में आराम से बैठकर जुगाली करती है, उसी प्रकार धारणा में लिए हुए सिद्धांतों का स्मरण करके उन्हें विचार में लेकर उन पर चिंतन मनन करना आवश्यक है। बस शास्त्र स्वाध्याय किया, सुना, याद किया, छुट्टी हो गई, वो नहीं चलेगा। जरूरी नहीं कि ऐसा 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 बैठना है, ऐसे यहाँ नाक की हड्डी, इधर पॉइंट को देखते रहना है, रीढ़ की हड्डी, ये कुछ बातें नहीं है। आपका दिन भर कुछ न कुछ काम चलता है तो वो चलते हुए काम में ये सारे सिद्धांत का एप्लीकेशन चलेगा। रोटी बनाते हुए ये काम मेरा नहीं, ये ख्याल में आएगा। बनाते हुए की बात, होते हुए को हम उसका कार्य किस किस का है ये हम, ये विचार दिन भर चलते रहेंगे क्योंकि हमने जो सुना है उसके विचार चलेंगे। फिर शांति से एक जगह बैठकर भी उस पर चिंतन मनन चलेगा इस बात का। देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए क्योंकि जिनागम का उपदेश 4 अनियोगों में विभाजित है। 4 अनियोगों के नाम मालूम है ना? प्रथमानुयोग, कोई भी अनुयोग ले लो किसी का भी नाम, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। चारों ही अनियोगों का तात्पर्य वितरकता है परंतु प्रत्येक अनियोग की कथन पद्धति और विषय में अंतर है। प्रथमानुयोग में तो कहेंगे था, एक राजा था, वो चक्रवर्ती था, उसने वो तो सब छोड़ दिया, फिर मुनि पद अंगीकार किया, वो मोक्ष चला गया, उसकी बात करेंगे। चरणानुयोग में क्या कहेंगे? ऐसा करना चाहिए, मुनिराजों को उनके आवश्यक कर्तव्य ऐसे ऐसे है, श्रावक को ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा दान पूजा गुरु उपास्थी स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेती, पहला कौन सा लिया? देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणी दिने दिने। श्रावक को ये ऐसे षट कर्म दिन यानी प्रतिदिन करना चाहिए, ये चाहिए वाली बात। हमने तो सुना था कि जीव शरीर की क्रिया कर ही नहीं सकता, पैसे को यहाँ से वहां दे ही नहीं सकता, वो द्रव्यानियोग की भाषा है। चरणानुयोग में तो ऐसा कहेंगे आप दिन प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, शांति से बैठकर वो तत्व निर्णय करना चाहिए, ये चरणानुयोग की भाषा होती है। उपदेश की भाषा ऐसे ही होती है। वहां ऐसा नहीं करना कि जीवों की हिंसा न हो इस तरह से आपको आचरण रखना चाहिए। अरे एक जीव दूसरे जीव को मार ही नहीं सकता ना, वो द्रव्यानुयोग कहेगा। परंतु जब आप काम कर रहे, कोई रसोई कर रहे, खाना खा रहे, कोई भी आपकी जो कोई दिनचर्या चल रही है, तो उसमें अन्य जीवों की कोई घात न हो इस संबंधी आपको जरूर वैसा देख शोध कर ही काम करना चाहिए। और ये चारों ही अनुयोगों का ऐसा समन्वय चलेगा एक साथ, नहीं तो स्वच्छंद हो जाएगा जी। ये चरणानुयोग की भाषा है। करणानुयोग में वहां तो सूक्ष्म कथन होगा जीवों के परिणामों का और कर्म का, वहां कैसे कैसे क्या क्या बातें होती है उसका संबंध बताया जाएगा। और द्रव्यानुयोग में सिद्धांत होंगे, जिसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, निमित्त से कार्य नहीं होता है ना, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का करता है आदि, जो सारी जो बातें है वो द्रव्यानुयोग में कथन की जाए। प्रत्येक अनुयोग की कथन पद्धति अलग है, उसका विषय अलग है, परंतु प्रत्येक का तात्पर्य क्या है, वितरकता प्राप्त करना। तो ये कैसे हासिल करना, कैसे स्वपर भेद विज्ञान के लिए उसका यूटिलाइजेशन करना है, ये हमें उसका रहस्य समझना चाहिए। इतना पैराग्राफ पूरा करते हैं। एक ही प्रवचन में विवक्षित प्रयोजनवश यानी किसी प्रयोजन के कारण अन्य अन्य अनुयोग का कथन किया जाता है। वहां ऐसा कोई एयरटाइट कंपार्टमेंट नहीं है, नहीं नहीं ये प्रथमानुयोग ही है, इसमें अन्य कुछ नहीं बातें। अरे प्रथमानुयोग में भी वहां बातें आएगी कि वो राजा था, जंगल में जा रहा था, उनको मुनिराज मिले, मुनिराज ने ऐसा ऐसा उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया, वहां सारा द्रव्यानुयोग का कथन चलेगा। हम बचपन में ऐसे प्रथमानुयोग की कहानियां पढ़ते थे, तो जब जब ऐसा उपदेश की बात आई थी तो हम पेज टर्न करते थे, क्यों, हमको स्टोरी पढ़नी थी ना आगे। तो ऐसे एक ही ग्रंथ में सभी अनुयोगों का वर्णन होता है। उस समय उस कथन का योग्य अर्थ और उसका प्रयोजन हमें समझना चाहिए। शास्त्र का प्रयोजन वीतरागता का उपदेश देना है, रागादि मिटाने का ही उसमें प्रयोजन होता है, कहीं पर भी रागादि बढ़ाने का पोषण नहीं होता। अब और भी उसकी जो कोई चरण इसमें देशना के संबंध में बातें हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलो चौबीसों भगवान की जय।